मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 26 जून 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप मेरे साथ हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति रही है खासकर आजादी के बाद से लेकर अब तक उसकी यात्रा कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस यात्रा में कहीं न कहीं जरूर मजा आ रहा होगा। यूं कह लीजिए कि आज उस यात्रा का अंतिम दिन है। आज मैं इस यात्रा की समाप्ति इस शीर्षक से करना चाहूंगा कि नई आर्थिक नीतियों के तहत कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तो आइए पहले हम उन कदमों को देख लेते हैं। देखिए सीधी सी बात है, एक तथ्य आप अपने दिमाग में ला सकते हैं और वो तथ्य यह है कि इससे पहले यानी कि आर्थिक उदारीकरण से पहले कौन सी नीति थी? आर्थिक संकीर्णता की नीति थी, आर्थिक संरक्षणवाद की नीति थी। उसमें कुछ तथ्य आपको मालूम हो गए हैं कि किस तरह से लाइसेंस राज्य था, किस तरह से इंस्पेक्टर राज्य था, किस तरह से उद्योगों को बिल्कुल जकड़ करके रखा जाता था। उनके काफी डिटेल्स आपके दिमाग में आ गए हैं ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। तो सीधी सी बात है कि अगर अब आप उदारीकरण के रास्ते पर चल पड़े हैं तो सीधी सी बात है कि वो जितनी भी श्रृंखलाएं थी, जितनी भी जंजीरें थी जो आर्थिक व्यवस्था के शरीर पर पड़ी हुई थी, जो डाली गई थी, उन्हें आपको धीरे धीरे काट काट कर अलग करना पड़ेगा। देखिए अभी तो जो मैंने बात कही वो फिलोसॉफिकल तरीके की बात है, एक सीधे सीधे तथ्य बता दिया है लेकिन बहुत ही केंद्रीय भाव है, इसीलिए इसकी उस तरह से कह लीजिए कि उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि यदि आप एक बार केंद्रीय भाव पकड़ लेते हैं तो उस केंद्रीय भाव की परिधि में यानी कि उसके चारों तरफ जो तथ्य दिए जा रहे हैं उन तथ्यों को समझना बहुत आसान हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि तथ्यों को जब एक बार आप समझ लेते हैं तो भूलना मुश्किल हो जाता है। आप सोच करके देखिए कि केंद्रीय भाव में कितनी बड़ी शक्ति होती है, उसमें बहुत ही जबरदस्त किस्म की आकर्षण शक्ति होती है। तो दोस्तों ये तो चलिए केंद्रीय भाव की बात हुई, अब मैं कुछ उन तथ्यों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपको ले जाना चाहूंगा, जो सीधे सीधे यूं कह लीजिए कि सरकार ने उपायों के रूप में किए कदम उठाए। क्योंकि जब अगर एग्जामिनेशन में मान लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तब आप मेरे इस केंद्रीय भाव को लिख करके छुट्टी नहीं पा सकते, आपको कदम बताने पड़ेंगे, स्टेप्स बताने पड़ेंगे कि आफ्टरऑल गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो आइए संक्षिप्त में समय की सीमा को देखते हुए मैं कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में आपसे चर्चा करता हूं। देखिए पहला है कि जो हमारी औद्योगिक नीति थी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 48 और 56 को याद करके देखिए, और इसके बाद फिर मिसेस गांधी और राजीव गांधी के समय तक कुछ चीजें चलती रहीं, उनमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किए गए, बल्कि ज्यादा अच्छा शब्द होगा कि उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। अब ये एक हेड, ये कह लीजिए कि सब पॉइंट हो गया है ना, एक शीर्षक हो गया कि औद्योगिक नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन। अब इसके तहत फिर कौन कौन से कदम उठाए गए उसमें आप कुछ बातों की कल्पना अपने दिमाग से अभी खुद भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर लाइसेंस राज समाप्त कर दिया गया, कुछ उद्योगों तक सीमित रखा गया। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो उद्योगों की बहुत बड़ी संख्या सुरक्षित कर दी गई थी कि इसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम करेंगे, उनमें बहुत अधिक कटौती कर दी गई और उसमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाने लगा, यहां तक कि हम फॉरेन लोगों को भी उसके लिए आमंत्रित करने लगे। और अब हम इस स्थिति तक आ गए हैं, आप देखिए कि जो डिफेंस का सेक्टर है उस डिफेंस के सेक्टर में भी निजी क्षेत्र के लोग आ गए हैं और बकायदे विदेशी सहयोग से भी वो बकायदे इंडस्ट्री लगा सकते हैं, जबकि डिफेंस का सेक्टर बड़ा सेंसिटिव माना जाता है। लेकिन हम धीरे 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 यहां तक आ चुके हैं क्योंकि उदारीकरण को भी तो शुरू हुए लगभग 30 साल होने ही जा रहे हैं। इसके बाद और भी जो दूसरे उद्योग के क्षेत्र थे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए। और एक बड़ा काम जो किया गया वो ये भी, जो लघु सूक्ष्म और मध्यम श्रेणी के उद्योग थे उनके लिए बहुत अधिक उद्योग आरक्षित कर दिए गए थे, लगभग 800 उद्योग, यानी कि इसमें बड़े उद्योग नहीं लगाए जा सकते, उनकी संख्या सीमित कर दी गई, उनमें भी काफी कटौती की गई। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो विदेशी निवेश को लेकर है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के है। आप वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, सीधी सी बात है कि इस तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाए गए जो कि भारत में अगर कोई निवेश करना चाहता है तो बहुत सरलता से बहुत आसानी के साथ उसका निवेश कर सके, और यहां तक कि जो विदेशी निवेशक हैं उनको भारतीय शेयर मार्केट में धन लगाने की अनुमति दी गई। ये बहुत बड़ी बात है, देखिए किसी भी देश के शेयर मार्केट में अगर धन लगाने की अनुमति मिल जाती है तो अगर वो देश चाहे तो अपने धन के जरिए हमारे शेयर मार्केट को ध्वस्त कर सकता है। ये बाद में किया गया। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि देश मजबूत हो चुका है तो भारत सरकार ने अलाउ कर लिया है कि ठीक है आप हमारे शेयर मार्केट में भी धन लगाइए, तो सीधी सी बात है कि भारत में जो विदेशी मुद्रा है उसका प्रवाह इसके कारण भी बढ़ेगा। इसके बाद इसी के तहत नेक्स्ट है कि जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी वगैरह की चीजें, या आपको अपने उद्योग के लिए बाहर से कच्चा माल मंगाना है, रॉ मटेरियल मंगाना है, तो उसके भी जो इंपोर्ट पॉलिसी है उसको आसान बना दिया गया, जबकि पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी दोनों ही बहुत कठिन थे, बहुत कड़े थे। इसके बाद दोस्तों जो भारतीय मुद्रा है उसका विदेशी मुद्रा में विनिमय दर जो पहले पूरी तरह से रिजर्व बैंक की पकड़ में होता था उसके नियंत्रण को भी धीरे धीरे कम किया गया। ये विदेशी मुद्रा से, विदेशी निवेश से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे। टैक्स में सुधार किए गए, टैक्स रिफॉर्म आप कह सकते हैं, कर सुधार, और कर में बहुत सुधार किए गए। मैं एक दो आंकड़े आपको बता रहा हूं, बेहतर होगा कि आप इन आंकड़ों को याद कर लें। उदाहरण के तौर पर 1991 में हमारी जो इनकम टैक्स की दर थी वो मालूम है कितनी थी, 56%। यानी कि अगर आप 100 रुपए अर्न करते हैं तो उसमें से 56 रुपए आप इनकम टैक्स में दे देते हैं। अभी आप देखिए कि जो घट करके बहुत कम रह गई है, अब मैक्सिमम 30% है, और उसी समय उसको घटा करके 40% कर दिया गया, जो अब घट करके 30% के आसपास आ गई है। क्योंकि देखिए अगर आप टैक्सेस बहुत हाई रखते हैं तो लोग क्या करेंगे, लोग टैक्स देने से बचने की कोशिश करेंगे, जिसे आप टैक्स चोरी कह लीजिए, और अगर अब टैक्स चोरी होती है तो सीधी सी बात है कि उससे ब्लैक मनी बढ़ता है, और ब्लैक मनी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए बहुत बुरी चीज होती है। तो इनकम टैक्स में कमी की जाने लगी। ठीक इसी तरह से जो निगम आय कारपोरेट टैक्स भी जो उस समय 51.75 था उसको तुरंत कम करके 46% कर दिया गया, और अभी इसे और भी कम किए जाने की बात हो रही है। कस्टम ड्यूटी जो सोचिए कि 200% के करीब होता था उसको घटा करके 65% किया गया। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने मार्केट को दुनिया के लिए खोल रहे हैं, और इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है वो ज्यादा से ज्यादा अर्न करने का वातावरण प्राप्त कर सकें, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाएं और उनकी आय में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो, और उनमें धन या कह लीजिए कि कमाने की एक इच्छा शक्ति भी पैदा हो। देखिए जब टैक्सेस बहुत हाई होते हैं तो लोगों की जो इच्छा शक्ति होती है धन कमाने की वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है कि सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर में भी बहुत से रिफॉर्म किए गए, कुछ के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, लगभग वही पॉइंट यहां भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस की शुरुआत की गई कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनका धीरे धीरे विनिवेशीकरण किया जाए, लेकिन विनिवेशीकरण 49% तक ही हो, क्योंकि जिसके पास 51% शेयर होंगे वो उसका मालिक होगा, तो सरकार ने कोशिश ये की कि मालिकाना हक तो हमारे पास ही रहे लेकिन 49% प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, क्योंकि जैसे ही प्राइवेट सेक्टर को 49% दे दिया जाएगा तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो बोर्ड में आ जाएगा, जो प्रबंध समिति है उसमें आ जाएगा, तो इससे जो कंपनी है जो उद्योग है उसका जो संचालन है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से होने लगेगा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर ने पैसा लगाया है वो तो इस बात का ध्यान रखेगा कि भी कंपनी प्रॉफिट में आए। इसके बाद जो घाटे वाली सार्वजनिक कंपनियां थी उनको बंद करने की बात कही गई, और जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी जो उद्योग थे उनसे ये कहा गया कि अगर अब आपको और धन चाहिए तो आप अपने रिसोर्सेस से इकट्ठा कीजिए, सरकार आपको पैसा नहीं देगी, फंड नहीं देगी। जब सरकार देखिए ऐसा कह देती है तो सीधी सी बात है, पहला तो यह है कि आप अपने घाटे को रोकिए, ये घाटा ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि घाटा अगर आप नहीं रोकेंगे तो अपने संसाधन से आप कितना धन इकट्ठा कर पाएंगे, तो अप्रत्यक्ष रूप से यही कहा जा रहा है, और अगर आपको घाटा हो रहा है तो फिर आप देखिए कि आप कहां से उसके लिए पूंजी लेकर आएंगे। तो इस तरह के कुछ सार्वजनिक संबंधी सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी सुधार किए गए। और लास्ट में हम एक सुधार पर और चर्चा करना चाहेंगे, वह है वित्तीय क्षेत्र में सुधार, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। वित्तीय क्षेत्र में क्या किया गया, आप देखिए कि आज आपके सामने कितने सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक मौजूद हैं। पहले कल्पना नहीं कर सकते, पहले एकदम शुरू में प्राइवेट सेक्टर में बैंक थे, इसके बाद उनका निजीकरण कर दिया गया तो सारे बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के हो गए। लेकिन आज आप देखिए कि कितने प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, तो यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी बैंक खोलने की अनुमति दी गई, और जो पहले से दूसरी जगह खुले हुए हैं उन्हें कहा गया कि आप हमारे यहां आकर के बैंक खोलिए। आप देखिए कि फॉरेन बैंक तक अब भारत में काम कर रहे हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, जो कैपिटल मार्केट है, पूंजी बाजार जिसे आप शेयर मार्केट कह सकते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बकायदे सेबी के अधिकारों में वृद्धि की गई। सेबी के बारे में आप जानते हैं और आपको जानना भी चाहिए, और 1992 में तो उसे स्टेचुररी पावर भी दे दिए गए, ताकि हमारा जो शेयर मार्केट है वो ज्यादा से ज्यादा साफ सुथरा हो सके और लोगों की विश्वसनीयता बढ़ सके, क्योंकि इस समय तक आते आते शेयर मार्केट में बहुत से घपले होने लगे थे, तो उसको लेकर के देश चिंतित था, क्योंकि अगर शेयर मार्केट में इसी तरह से घपले होते रहेंगे तो लोग फिर शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे, और शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाने का मतलब है कि उद्योगों के लिए धन की बहुत कमी हो रही है। इसी तरह से फ्रेंड्स, कैपिटल मार्केट को बकायदे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया गया, और भारतीय कंपनियों को भी यह इजाजत दे दी गई कि वो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से धन प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अभी हमारे जो भारतीय उद्योगपति थे, अगर उन्हें धन की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, पूंजी की जरूरत है, पूंजी शब्द ज्यादा सटीक होगा, तो वो केवल भारत से ही प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अब उन्हें कहा गया कि नहीं, अगर आपको ठीक लगता है तो आप फॉरेन कंट्री से भी अपने लिए कैपिटल हासिल कर सकते हैं और अपने उद्योगों का विस्तार कर सकते हैं या नए उद्योग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ उपायों के बारे में आपसे चर्चा की है, और आपने ध्यान दिया होगा कि ये उपाय जो मैंने शुरू में एक फिलोसॉफिकल वर्ड्स आपको दिए थे उसी के इर्द गिर्द हैं, और जब तक हम अपनी बात तथ्यों के आधार पर नहीं कहेंगे, नहीं लिखेंगे, तो एग्जामिनेशन की दृष्टि से वह हमारा आंसर स्कोरिंग नहीं हो सकता, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। फ्रेंड्स, मैंने अभी खासकर इस आर्थिक विकास की जो यात्रा है इस पर 6 एपिसोड आपको प्रोवाइड किए हैं, तो इसमें कुल मैंने 80 मिनट आपके लिए हैं, आपके अमूल्य समय में से 80 मिनट आपने मेरे साथ बिताए हैं, या यूं कह लीजिए कि आर्थिक विकास की यात्रा आपने मेरे साथ की है। अब मैं आप सबसे इसकी कीमत मांगता हूं, या कह लीजिए कि इसकी मजदूरी मांगता हूं, इसका रिवार्ड मांगता हूं, इसका रेमुनरेशन मांगता हूं। और रेमुनरेशन केवल यह है कि आप ईमानदारी के साथ मुझे ये बताइए कि जो आपने 80 मिनट मुझे दिए हैं, ये 80 मिनट आपको कैसे लगे? क्या ये 80 मिनट देने के बाद जो आर्थिक विकास का जो परिदृश्य होना चाहिए आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट, बिना किसी भ्रम के, और जो जरूरी है केवल वही चीजें, वो आई या नहीं आई? इनफैक्ट सच पूछिए तो यह मैं अपने ही हित के लिए आपसे कह रहा हूं, इसीलिए मैंने इसे रिमुनरेशन का नाम दिया। प्लीज आप सब मुझे बताएं कि इस विषय पर जो भी बातचीत आप सबके साथ मैंने की है उससे आपको क्या लाभ हुआ है, क्या लाभ नहीं हुआ है, या 80 मिनट आपके बेकार चले गए, या और क्या क्या होता तो और भी बेहतर होता। यदि आप मुझे बताएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो दोस्तों, अब इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर किसी नए विषय पर बात करेंगे। अब हम लोगों को करंट अफेयर्स पर भी बात करनी चाहिए, तो कल से अब हम लोग करंट अफेयर्स पर बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा, और यहीं आज के डेली ऑडियो लेक्चर को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार।